ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी के संस्कृत बुलेटिन प्रसारण के 50 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी। दिल्ली सरकार ने 28 जून को हुई बारिश के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की। जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थित पंप हाउस का निरीक्षण किया और पुलिस कमिश्नरेट दिवस के अवसर पर कल दिल्ली पुलिस किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन करेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि इस वर्ष का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था।
मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हूल दिवस मनाया जाता है और ये दिन वीर सिद्धो और कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है। झारखंड के इन सपूतों का सर्वोच्च बलिदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में देश में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है और अमृत महोत्सव के दौरान देशभर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी संस्कृत बुलेटिन प्रसारण के 50 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है।
मम प्रियाः देशवासिनः अदय अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूँ। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूँ।
दिल्ली में 28 जून को हुई अप्रत्याशित बारिश के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को दिल्ली सरकार 10-10 लाख रुपए मुआवजा देगी। राजस्व मंत्री आतिशी ने अपने आदेश में राजस्व विभाग के ACS को जान गंवाने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें तुरंत मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राजस्व विभाग को क्षेत्र के अस्पतालों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से मृतकों की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। श्रीमती आतिशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि 28 जून को 24 घंटों में 228 मिलीमीटर की अत्यधिक बारिश के कारण कई मौतों की सूचना उन्हें मिली। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को तेजी से मुआवजा पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थित पंप हाउस का आज निरीक्षण किया। एक प्रेस वक्तव्य में जल मंत्री कार्यालय ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में अप्रत्याशित रूप से हुई बारिश के कारण चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थित पंप हाउस में जल भराव हो गया था, जिस कारण पंप हाउस के मोटरों को नुकसान पहुंचा और मध्य दिल्ली के कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित रही।
श्रीमती आतिशी ने अपने निरीक्षण में पाया कि जल बोर्ड ने पंप हाउस से अत्यधिक पानी निकाल दिया और मोटरों को भी ठीक कर दिया है। कार्यालय ने आश्वासन दिया कि मोटरों की मरम्मत होने की वजह से अब जल आपूर्ति भी सामान्य हो जाएगी और लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जल मंत्री आतिशी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग सहित सभी संबंधित विभाग प्लांट का संयुक्त निरीक्षण करें। इस निरीक्षण के आधार पर योजना तैयार करें ताकि आगे किसी भी प्लांट में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। वहीं जल मंत्री ने लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के साथ मिंटो ब्रिज अंडरपास स्थित पंप का जायजा लिया और अधिकारियों को आदेश दिया कि इस अंडरपास पर जल भराव रोकने के लिए नई तकनीक और मौजूदा पंप की क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय ने आज जल भराव की समस्या को लेकर सदर बाजार विधानसभा के किशनगंज इलाके में एनसीडी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के साथ मालवीय नगर, कृष्ण नगर, सफदरजंग एनक्लेव और एसएफएस अपार्टमेंट क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। सोशल मीडिया के माध्यम से महापौर ओबेरॉय ने आश्वासन दिया कि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के नियमित प्रयासों से स्थिति नियंत्रित है। उन्होंने नगर निगम के अफसरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत तेजी से काम करके इन क्षेत्रों की समस्याओं का निवारण किया और जनता को राह दिलाई। मीडिया से बात करते हुए महापौर ओबेरॉय ने कहा कि सभी अधिकारी मिलकर जलभराव की समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हैं और निगम द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है कि दिल्लीवासियों को राहत मिले।
दिल्ली में बारिश हुई, 88 साल का रिकॉर्ड टूटा। आज हम किशनगंज आरयूबी पर खड़े हैं। परसों यहाँ पे जलभराव की समस्या थी और यहाँ पर 24 घंटे हमारे एनसीडी के अधिकारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, जो 6 परमानेंट पंप हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। 2 एडिशनल पंप भी यहाँ पर एमसीडी द्वारा लगा दिए गए हैं। हर वो कोशिश की जा रही है दिल्ली की जनता को जलभराव की समस्या से राहत देने की।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी के दक्षिणी रिज में 1100 पेड़ों की अवैध कटाई पर दिल्ली सरकार की गठित तथ्यान्वेषी फैक्ट फाइंडिंग समिति ने वन विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर कल होने वाली बैठक में बुलाया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी रिज में कटे पेड़ों के पीछे जिम्मेदार व्यक्तियों की जांच करना रहेगा। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर तथ्यान्वेषी समिति ने पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष, भूप्रबंधन प्रधान आयुक्त तथा आवास आयुक्त और दिल्ली पुलिस के दक्षिणी दिल्ली डीसीपी के साथ संबंधित क्षेत्र के एसएचओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन होंगे, जो अपनी रिपोर्ट दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सौंपेंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भी पेश की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में आपातकालीन विभाग और ऑपरेशन कक्ष आज पूरी तरह से शुरू हो गए हैं। एम्स ने सूचित किया था कि शुक्रवार को तेज बारिश के कारण ट्रॉमा सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। सूचना के अनुसार एयर कंडीशनिंग के काम नहीं करने और दीवारों से पानी रिसने के कारण सभी ऑपरेशन कक्ष बंद करने पड़े थे। इसके कारण न्यूरोसर्जरी ठप रही और आपातकालीन मरीजों को सफदरजंग या अन्य सरकारी अस्पतालों में भेजा जा रहा था। अब ट्रॉमा सेंटर के सभी ऑपरेशन कक्ष शुरू हो गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने आज बताया कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार कार्य अपने नियमित समय से चल रहा है और 2026 के अपने लक्ष्य तक सेवा शुरू कर देगा। डीएमआरसी ने बताया कि वर्तमान में चौथे चरण के अंतर्गत तीनों कॉरिडोर पर 50% से अधिक प्रगति हो चुकी है। इसके अलावा मजलिस पार्क मौजपुर खंड पर लगभग 80% सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। वहीं गोल्डन लाइन के एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर और मेजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम आर के आश्रम मार्ग कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों पर सुरंग बनाने का काम जारी है। डीएमआरसी ने बताया कि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में पेड़ काटने और भूमि अधिग्रहण के लिए कुछ अनुमतियां अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा मेट्रो अधिकारी नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर स्थल निरीक्षण भी करते रहते हैं। तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम कल से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
ये विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पारित किए गए थे। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का लक्ष्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानून के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराना और साथ ही पीड़ितों को FIR की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्छानुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जनरल द्विवेदी ने 15 दिसंबर 1984 को थल सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। इससे पहले जनरल मनोज पांडे 4 दशक से अधिक की सैन्य सेवा के बाद आज थल सेना अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका कार्यकाल परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देने और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मजबूत प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस कल राजधानी के किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन कर रही है। इस परेड में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित आमंत्रित लोग शामिल होंगे, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। परेड सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी और इसका सीधा प्रसारण दिल्ली पुलिस के यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट पर किया जाएगा। मानसून में स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ आज राजधानी के कनॉट प्लेस ई ब्लॉक में एक हेल्थ वॉक का आयोजन किया। NDMC ने यह कार्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ के तहत किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली के डॉक्टरों और NDMC डॉक्टरों दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के लिए निर्धारित उड़ानों को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि इन उड़ानों ने कल से टर्मिनल 2 और 3 से परिचालन शुरू कर दिया है। राजधानी के कुछ इलाकों में आज मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज वर्षा और आंधी तथा बिजली कड़कने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी के संस्कृत बुलेटिन प्रसारण के 50 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी। दिल्ली सरकार ने 28 जून को हुई बारिश के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थित पंप हाउस का निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नरेट दिवस के अवसर पर कल दिल्ली पुलिस किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।